ओम शांति। इक्कीस से 92 का प्रातः क्लास चल रहा था ना, पेज 2 के अंत पर।
क्या नीचे जी मरना माना एक बाप का बनना, इतनी ऊंची मंजिल है एक बाप का बनना, माना जीते जी मरना। जब तक जीना है तब तक पीना। ये ज्ञान भी बाप से सुनने की इच्छा तब तक रख रहे हैं कि और नई नई बातें सुनाने, और नई नई बात सुनाने, अभी कुछ और सुनना बाकी है, अभी पूरी बात समझ में नहीं है। ये भी कब तक, जब तक जिंदा है देवहन तब तक ये पूछ पूछ की पूछ दे अभिमानी की उछल तारा लगा हुआ। और जब बन गए बाप के तो जो बाप का फरमान, बाकी हमें क्या चिंता। ऐसे थोड़े कहते हैं हे पतित पावन आपके ज्ञान सुनाओ, क्या कहते हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो लक्ष्य पावन बनने का है, ये लक्ष्य नहीं है कि ज्ञान सुने। ज्ञान तो साधन है इस बात का, ज्ञान मन समझ है पहचान, बाप को पूरा पहचानने का। तो बाप समझ जाते हैं इन बच्चों ने अभी पूरा पहचाना है या नहीं पहचाना है, कैसे समझ जाते हैं, कौन सी बात समझ जाते हैं। हाँ, जब तक बच्चे पूछ पूछ की पूछ लगी है तो इसका मतलब अभी बाप को पूरा पहचाना नहीं है। अरे बच्चे क्या बाप से पूछेंगे, अगर बच्चे बन गए तो क्या पूछेंगे, जब ज्ञान में आए थे या उससे पहले कुछ जानते थे क्या, फिर एडवांस में आए तो तुम कुछ जानते थे क्या, कुछ नहीं जानते थे। बाप नहीं आकर के सारी नॉलेज दी तो तुम्हारी बुद्धि भूल गई, अब तुम पूछ पूछ करने लगे तो शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना। हमको तो अपने देहत के घर जाना है, क्या कहाँ जाना है, तो अभी तक कौन से घर में, अभी तक कौन से अभी के घर में है क्या है? अरे जाना है देहत के घर में तो अभी तक कौन से घर में रहे पड़े, हड्डी के संबंधियों के घर में रहे पड़े क्या है, कि हड्डी के बाप के घर में रहे पड़े है? है? का बाप आया हुआ और हम पड़े हैं कहाँ, कैसे समझता कहाँ पड़े हैं, देहती के बाप के घर में पड़े, बाप कह देंगे यही बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, तो कह दे आज भाई सब कहाँ रहे पड़े समझ लो, कहाँ रहे पड़े आप बताओ। हाँ ये मधुबन है एक पीछे का महल, ऐसा चुप नहीं था सही से बोलो। हाँ तो हद के घर में रहे पड़े, जाना कहाँ है बेहद में जाना, बेहद के घर में जाना, तो बाप का घर है बेहद का घर, वहां जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब अपने घर को पहचाना है, अब बाप ने याद दिलाया, क्या भूल गए थे, बेहद के घर को भूल गए थे, उनको अपने बेहद के घर को भूल गए हो ठीक, तथा करके तो ब्राह्मण को जानते हैं या जानते होंगे, उन्हें भी याद होगा कि बेहद का घर कौन सा है, कौन सा है बेहद का घर, उन्हें ब्राह्मणों की दृष्टि में तो याद होगा ना, याद है कौन सा घर है बेहद का, तो कैसे मानते हैं बेहद का घर, परम धाम, परम धाम की रूप देखा क्या है, परम धाम कोई ऊपर धाम है, कहाँ है ऊपर, पूरे चांद सितारों की दुनिया से ऊपर कोई धाम है जहाँ बिंदु बिंदु आत्माएं रही पड़ी, उन्हीं बिंदु आत्माओं के किसी ग्रुप में हम भी वहां हमको पहुंचना, वहां हमारी सीट है, अब पृथ्वी तो गोल है, और पृथ्वी के चारों ओर आकाश है, सूरज चांद सितारे चारों ओर है कि नहीं, तो ऊपर किधर हुआ? गोल पृथ्वी में एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, फिर ऊपर किधर हुआ? क्या बालग्राम है, तो किधर हुआ कारामधाम? असली बात यह है कि आत्मा की ऊंची स्टेज, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टेज, वही कारामधाम की स्टेज। जबकि हम जीते जी बाप के बन जाते हैं मर करके, ऐसा है। हर आत्मा की अपनी अपनी स्टेज है, किसी की नीचे स्टेज चलो विनाश भी हो जाएगा, फिर भी हर आत्मा की स्टेज नीचे और ऊपर रहेगी जरूर। तो जो आत्माएं नीचे स्टेज वाली है वो नीचे स्टेज में उतने स्थान को घेर के रहेंगे, और जो उससे ऊपर की स्टेज वाली है वो उतने दायरे को घेर के रहेंगी। और परमात्मा सुप्रीम सोल सबसे ऊंची स्टेज वाला है, तो वो सारे को ही घेर करके रहेगा, सारे ब्रह्मांड को भी घेर करके रहेगा। मानो उसका दायरा ज्यादा सूक्ष्म हो गया, वो ज्यादा शक्तिशाली है, उसमें ज्ञान भी उतना ही ज्यादा भरा हुआ है। तो ये कवर करने की बात है, शक्ति की बात है। तो हम अपने घर को भूल गए। वास्तव में साकारी दुनिया में भी बाबा ने पहले ही मुरली बता दिया है, तुम परम धाम को इसी शक्ति को उतार लो। इसका क्या मतलब हुआ? इस दुनिया में ही हमको परम धाम की स्टेज की महसूसियत होने लगेगी। ऐसे बेहद के बाप के घर में जाना है, अब बाप ने याद दिलाया। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं तो वान प्रस्थी हो क्या, क्या समझाते हैं? वान प्रस्थी माना वाणी से परे स्थित रहने वाले, माना वान प्रस्थी, वाणी से तटस्थ रूपों में स्थित रहने वाले। वाणी से परे कोई साधारण भी नहीं, तटस्थ रूप में स्थित रहने वाले। फिर उनकी पूछ रह जाएगी है? तो रह नहीं सकती। तो बाप ने याद दिलाया कि तुम वानप्रस्थ हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब आया हुआ हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए? ऊपर या नीचे के दाएं बाएं? तो ले जाने करने की बात नहीं, बल्कि उसी स्टेज की बात है। कैसी स्टेज में ले जाने के लिए आया हूँ? जहाँ वाणी का प्रश्न रहता ही नहीं, वाणी से परे की स्टेज में पहुँच जाएंगे। मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी त्रास होते हुए निसंकल्प से पाना था को पा लिया। बाप को मिला, सब कुछ मिला। बाप है बीज, बीज मुट्ठी में आ गया तो सारा संसार रूपी वृक्ष, सारा विश्व मुट्ठी में आ गया। वान प्रस्थ में जाने के लिए सब भक्त भक्ति करते, सबका माथा भी भक्ति करते करते खराब हो गया। और वान प्रस्थ स्टेज में कोई असली स्टेज में नहीं पहुंच पाया। अब बात समझाते हैं सब वान प्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उनको इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, जो अपन को कहते हैं कि हमारी वान प्रस्थ अवस्था है, हम पक के ब्राह्मण बन गए। उनको इस अक्षर के शब्द के अर्थ का बिल्कुल पता ही नहीं है, सिर्फ नाम सुना है वान प्रस्थ अवस्था। जो बाबा ब्रह्मा की वान प्रस्थ अवस्था में आते हैं, अब हम ब्राह्मण बच्चों की भी वान प्रस्थ अवस्था है। फिर बोल बोल करते रहे, मेला करो सम्मेलन करो, कॉन्फ्रेंस करो। अरे वहां उतरे स्टेज में पहुंच करके फिर कहीं बोले कि स्टेज रह जाएगी क्या, तो सेवा कैसे होगी। वाणी से परे जाने वाली आत्मा मन का सेवा में दक्ष होगी, उसको कहीं जाना आने नहीं पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक स्थान पर बैठे ही दूसरी आत्माओं को खींच लेगी। हर सितारा अपनी दुनिया को बनाने में लग जाए, क्योंकि हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। भल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, कब से पुरुषार्थ किया है, जब से द्वापर हुआ शुरू, चाहे द्वापर युग की शूटिंग शुरू हुई यज्ञ के अंदर। सबसे पुरुषार्थ किसके द्वारा किया, पुरुषार्थ कराने वाले कौन हुए निमित्त, गुरु मनुष्य गुरु। इतना भी पुरुषार्थ किया मनुष्य गुरुओं द्वारा, परंतु वापस तो कोई बाण प्रतिष्ठेद में कोई नहीं जा सकता, निर्वाण धाम में कोई वापस जा ही नहीं सकता। ऐसी स्टेज में वापस ले जाने वाला तो एक ही बाप आया हुआ है, जो सब को वाणी से परे की स्टेज में ले जाए। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सब की वाण पर समझता है, माना छोटा बच्चा हो कोई, जैसे बाबा ब्रह्मा को देवी कहते हैं, छोटा बच्चा तो बोल सकता है। बाबा कहते हैं चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, समझदार हो या ना समझ हो, अब तो सब की वाण पर समझता है, वो अवस्था में टिक जाना चाहिए। अब बोल बोल करने करने से फायदा नहीं होना है। सबको वापस ले जाने आया हुआ हूँ, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं। वो स्टेज कैसी है, स्वीट और साइलेंस, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। शांति तो अपने घर में का हार है, है? तो ब्राह्मण को तो वो गले का हार शांति मिल गई होगी, जब चाहे पहन ले, जब चाहे हार को उतार दे, है कि नहीं मिल गई। शांति का हार मुट्ठी में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा पूरा मुट्ठी में आया नहीं। शांति खिसक जाती है तो सबको शांति चाहिए, कुछ कितना भी दिखावा करे, लेकिन अरे जो उस स्टेज में टिका हुआ होगा उसको कहने की भी दरकार नहीं रहेगी क्या, कि शांत रहो। उसकी दृष्टि मात्र से ही आत्माएं शांत हो जाएगी। तो यहाँ तो शांति हो जाएगी, यहाँ तो शांति हो न सके। हाँ मधुबन हेड ऑफिस में कुमार का दादी ने एक ब्राह्मण बच्चे से कहा, क्या कहा, देखो तुम पहले बहुत शांत रहते थे, अच्छा पुरुषार्थ करते थे, योगी थे, अब तो तुम बहुत अशांति कर रहे हो, क्यों ऐसा उधर बोल बोल कर करके अशांति कर। और बच्चे ने जवाब दिया, बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो शांति हो न सके, जब तक ये दुनिया है रावण की तब तक इसमें शांति तो हो न सके। घंटे दो घंटे हाथ पांव बांध करके बैठ जाओ याद में, तो उतने समय के लिए शांति और फिर शांति हो जाएगी। तो हमको ऐसा कभी समुद्धि नहीं बनना, तोते बनना है या कबूतर बनना है, है? तोते होते हैं अमरनाथ जी की कथा में दिखाए गए, इनको ज्ञान की कमी होती है, तो थोड़ा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर बाहर जाकर के ज्ञान की जय दे। तो ये अवस्था तो अंत में आनी है, अभी कैसे हो जाए? कुमार कह रहा है बहुत नाराज हो, अच्छा तुम यहाँ का वायुमंडल दूषित करोगे, मधुबन शांति धाम है और निकल जाएगा। तो क्या उन्होंने कथा करते तो ब्राह्मणों को शांति मिल गई है? मुख से भले शांति हो जाए बाहर से दिखाने के लिए, लेकिन अंदर संकल्पों का भंग कर चल रहा है, तो वो शांति हुई कि वाइब्रेशन बिगाड़ में हुआ? जो खुद एकाग्र स्टेज में नहीं होगा वो दूसरों को एकाग्र स्टेज में दिल गुरु की स्टेज में नहीं टिका सकता। जो स्वयं निसंकल्प होगा वो दूसरों को भी निसंकल्प स्टेज में टिका सकता है। जो जैसी अवस्था होगी वैसी ही अवस्था दूसरों की बना सकेगा। तो शांति धाम का मालिक तो एक कौन है? एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब सबको ले जाए, और उन्होंने कह दिया मालिक आया था ब्रह्मा के चरण में, शांति धाम का मालिक, और आकर के चला गया। अब शांति धाम सुख धाम का निर्माण हम करेंगे। और क्या किया? ईंटों का शांति धाम और ईंटों का सुख धाम बनाई दिया। चलो भैया शांति धाम सुख धाम, चलो हम तुम्हें दिखाएं। तो घेर घेर के पंडित पुजारी शांति धाम सुख धाम ईंटों का बना हुआ दिखाने के लिए ले जाते। ये हो गई थी यात्रा भक्ति मार्ग की। तुम बच्चे जानते हो सुख धाम में जाने के लिए वाणी से परे जाते हो क्या? जाने के लिए क्या करना पड़े? वाणी से परे जाना पड़े। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों से प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस माने प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम सबको घर ले जाऊंगा। अगर मेरी सीमत पर चलेंगे तो क्या बात है? अगर सीमत पर नहीं चलेंगे तो नहीं ले जाऊंगा क्या? ले तो जाऊंगा, लेकिन सीमत पर न चलने वालों को मारपीट के ले जाना पड़ेगा, और सीमत पर चलेंगे तो सहज सहज पहले राजयोग के द्वारा चले जाएंगे, नहीं तो फिर कठिन बात हो जाएगी, मेहनत की बात हो जाएगी। सुखधाम में कोई नबी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। क्या किसी को सुख अच्छा न लगता हो, कोई कहे कि स्वर्ग के सुख काग मिलता समान, हमें ऐसे स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। तो कहते कोई बात नहीं, तुम्हें सुख नहीं चाहिए, लेकिन शांति धाम अपने घर में तो जरूर भजित के भजित के ले जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम पसंद करो या न करो, मैं आया हुआ हूँ, तुमको जबरदस्ती भी ले जाऊंगा। जबरदस्ती ऐसी अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी किसकी होती है? अच्छा जैसे कितना बच्चा बैठा हुआ है और इसके बाप ने इसका समर्थन पत्र दिया नहीं, नहीं दिया अपने हाथ से लिख के, और यहाँ बैठा हुआ है। अब कोई कहे कि इस बच्चे को हम नहीं ले जाने देंगे, और बाप को निश्चय उखड़ गया और समझ के वो रोक सकता है नहीं रोक सकते ना। लेकिन बाप क्या कहते हैं क्या? मैं तुम बच्चों को जबरदस्ती ले जाऊंगा, ऐसी कौन सी अथॉरिटी मिल जाएगी बाप को? अभी क्यों नहीं ले जाते? अभी ले जाओ है? अरे क्योंकि अभी बच्चे खुद ही रावण के बने हुए हैं, अभी बाप को एग्रीमेंट लिख के नहीं दिया है। क्या क्या एग्रीमेंट लिख के देना है कि बाबा अब हम आपके बच्चे बने हैं, चाहे प्यार करो चाहे दुख रहो, जहाँ बिठाए जहाँ सुलाए जो खिलाए जैसे चलाए जहाँ भेजे वैसे करने के लिए हम तैयार, हम आपके बच्चे। बच्चों ने ये एग्रीमेंट कर दिया क्या? तो एग्रीमेंट ही नहीं किया तो बच्चे काहे के थे भाई? अरे हमें क्यों बहुत धक्का हो? तो जरूर बाप की ऐसी अथॉरिटी होगी, इस दुनिया का 500 करोड़ में से एक एक बच्चा ये अंजाम करेगा जैसे बाप अंजाम करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुमको वापस जरूर ले जाऊंगा, तो बच्चे भी क्या अंजाम करेंगे कि ओ गॉड फादर मैं तेरा बच्चा हूं। अभी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि स्वीकार करेंगे। फिर अगर कोई नहीं जाता है तो घसीट के भी ले जाऊंगा, जबरदस्ती ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। छोड़ूंगा किसको भी नहीं, घर ले जाऊंगा। तो जिंदगी में भी तो ऐसे ही होता है, कोई किसी के बच्चे को रख सकता है अपने पास नहीं? और नहीं चलेंगे तो सजाएं दे करके मारपीट से दिला करके भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे कैसे? ऐसे क्योंकि ड्रामा में पार्टी ही ऐसा है। जब बाढ़ रहा हूँ तो मुंह ना दिखाऊ का अवसर ना डर जाए। इसलिए अपनी कमाई करके चलो तो अच्छा है क्या? अपनी कमाई करके चलो तो अच्छा है, देखो हाँ। इसकी एक बांधे जलाने का तीसरा पेज, पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे? बाबा कहते हैं तुम चाहो वरना चाहो तुम्हारे सब शरीरों को आग लगा करके आत्माओं को जरूर ले चलना। क्या कहा? तुम चाहो न चाहो तुम्हारे सब शरीरों को, नानी पोता चाचा मामा काका ताऊ पुत्र पुत्री घरवाली हमारी घरवाली है, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगा करके आत्माओं को जरूर ले चलना। मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो उच्च पद भी पाएंगे और आग में जलने का दुख भी नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में तो डबल आग लगने वाली है, उनकी डबल आग। एक तो एटम बम फटेंगे, आस्था तपेगा, और दूसरी बात काम की अग्नि भी दुनिया में बहुत जोर से जलेगी। दुनिया में दिन प्रतिदिन गंध बढ़ता ही चला जाएगा। डबल आग से बच जाओ। वो रास्ता बताता हूँ, मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे। क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो और मौत दो। क्या मांगा? मौत मांगते घर ले चलो, ये तो सब जानते हैं। मौत आया कि आया, पीछे कोई यहाँ रहना ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको चीची दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। कहाँ आया हुआ हूँ? चीची दुनिया में आया हुआ हूँ। सबको ले जाऊंगा जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। क्या कहा? वो क्या समझते हैं? कोई ऊपर है, ऊपर की बात नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना। आदिदेव कौन हुआ? एक है कि दो है? आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना। इनके शरीर में बाबा विराजमान होता है, इनके शरीर में। अरे इनके लिए बहुवचन है कि एक है? एक वचन तो किसके किसके? हाँ, इनके शरीर में बाबा विराजमान होता है। मान किनके शरीर में? बाप और दादा दोनों के शरीर। तो बाप कौन हुआ, दादा कौन हुआ? बाप कौन सी आत्मा हुई और दादा कौन सी आत्मा हुई? जैसे आत्मा को तो बाप दादा नहीं कहा जाता, शरीर धारण करते हैं तभी बाप दादा कहा जाता है, लेकिन बाप दादा है कंबाइन है। बाप प्रजापिता और दादा बड़ा भाई, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। बड़ा भाई मानो ब्रह्मा, तो प्रजापिता और ब्रह्मा मान राम कृष्ण की आत्माएं शरीर धारण करके बाप। ओम शांति। तो आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना, इसका मतलब आदिदेव बाप और दादा दोनों की आत्माएं ही। ये बाप दादा तो पार्ट में जाती है, इन्हीं के ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। यानी शिव ज्योति बिंद की कोई दिख में विराजमान होती है बाप और दादा में। तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों बैठे हैं। बाप दादा ही ईश्वर की स्थापना करते हैं कि शिव बाप जो करेगा तो वो पाएगा। नियम क्या है? जो करेगा तो पाएगा। सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु बाप क्या है? वो कराने वाला। रास्ता बताता है, सिर्फ कराता है बच्चों के द्वारा। वो बाप दादा ईश्वर की स्थापना करते हैं और सब राज्यों में बैठे। बच्चे क्या कहते हैं? तथा कवि ब्राह्मण क्या कहते हैं? हम स्वर की स्थापना करते। बाबा कहते हैं कि बाप दादा ही स्वर की स्थापना करते हैं और सब बच्चे राजयोग में बैठने वाले, तुम बच्चे दिलवाना मंदिर में जाते हो तो फिर इस ख्याल से आओ, इस ख्याल से दिलवाना मंदिर में किस ख्याल से जाओ कि वहाँ बाप और दादा बैठे हुए हैं। ये बाप दादा है। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी है दिलवाड़ा मंदिर। महारथी घोड़े सवार भी है, इस दादा में बाबा प्रवेश करते हैं। वह है गर्व और ये है चैतन्य। वो दिलवाड़ा मंदिर जड़ है और ये है चैतन्य। मार्गल देख करके आते हैं ना, कौन सा चैतन्य? जहां मैंने कहा अच्छा, जहां देश की नाली चल रही थी पानी क्यों है? आप बता था विद्यार्थी नहीं आते क्या? अच्छा चलो बाप नहीं आते, दादा आते हैं। अच्छा 69 से पहले नहीं थी चैतन्य? चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर बाप नहीं था कौन था? हाँ जी अच्छा सुप्रीम कोर्ट तो था, सुप्रीम कोर्ट ज्योति बिंदु तो था, तो वो भी तो बात है बेहद क्या तुम होगा। बाप दादा यहाँ जो क्लैरिफिकेशन दिया है वाणी में, मुरली में, आज की वाणी में, मुरली में क्लैरिफिकेशन है। बाप दादा कौन आत्मा है? प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात राम कृष्ण की आत्मा है। ये भी क्या आदमी वाला व्यक्तित्व और मति वाला ब्रह्मा दादा लेकर आए किशोर जो अपना शरीर छोड़ करके फिर उसी ब्राह्मण बच्चे में दोबारा जो जन्म लेकर के यज्ञ में आता है ज्ञान में उसमें प्रवेश करती है। तो दोनों क्या हुए? बाप दादा। उनमें फिर कौन प्रवेश करता? शिव बाबा। इस दादा में बाबा प्रवेश करते हैं तो वो है जड़ और ये है चैतन्य। दिलवाड़ा मंदिर है जड़ और ये है चेतन। यह माने कौन सा? आज की तारीख में यह है चेतन प्रेजेंट में, बताओ पास में चेतन दिलवाड़ा मंदिर था या नहीं था? इस कल्प में इस कल्प में पास्ट टाइम में यानी जीते हुए टाइम में दिलवाड़ा मंदिर चैतन्य था या नहीं था? पहले मैंने आदमी था कराची में, फिर हैदराबाद में, हाँ कल की बात की बात कर रहे हैं, हाँ चार वर्ष के अंदर की बात कर रहे हैं। उस समय तो बच्चे नहीं थे, उस समय तो तीन का ही जन्म हुआ है बच्चा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्तियां थी, बाप था दादा था, बाकी तुम बच्चे याद में बैठे हो शायद राजयोग सीख रहे हो तो बच्चे तो कही नहीं हो तुम। तुम्हारा जड़ यादगार भी बना हुआ है यहाँ, यही जड़ यादगार बना हुआ है, यही चैतन्य चैतन्य तुम बैठे हुए तुलवारा मंदिर तुम्हारा चैतन्य हुआ। बाबा तो मंदिर की बात कर रहे हैं ना कि वो है जड़ यादगार तुम्हारी और तुम यहाँ चैतन्य में बैठे तो तुम्हारा है चैतन्य दिल वाला मंदिर। तो चैतन्य दिल वाला मंदिर कहाँ हुआ है तो बता? कंदल हुआ, कंदल में जड़ कहाँ है? जड़ तो माउंट आबू में है। यहाँ भी गए है, जैसे वहाँ काली मूर्ति वाला मंदिर है ऊपर है, गोरी मूर्ति वाला मंदिर नीचे है, वैसे यहाँ भी है। हाँ ये ठीक है कि ब्राट भी होगा चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, तो मिनी मिनी चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर भी होगा। बीज रूप आत्माओं की तो दुनिया ही छोटी, तो मंदिर भी कैसा होगा चैतन्य और जहाँ छोटा ही मंदिर होगा, छोटी होगी या थोड़ी होगी। तो वह है जड़, यह है चैतन्य। मॉडल लेकर के आते हैं ना बच्चे, यहाँ आते हैं तो अपना जड़ यादगार मॉडल भी तो देख करके आते हैं ना, आते कि नहीं आते हैं? देखे क्या आते हैं? देखा नहीं लेकिन देख करके आते तो है ना, आते ही। दिलवाड़ा मंदिर कितना रमणीक है, कल्प कल्प हू बहू ऐसा मंदिर बनेगा जो तुम जा करके देखेंगे, तुम कहेंगे ये सब टूट जाएंगे। क्या ये यादगार जड़ मंदिर सब टूट जाएंगे फिर कैसे बनेंगे? ये जड़ कैसे बनेंगे फिर जब टूट जाएंगे? तो ये प्यार नहीं करना चाहिए, ये जड़ मंदिर कैसे बनेंगे? हाँ ये जड़ बुद्धू बन जाएंगे, ड्रामा का शूटिंग का हिसाब रहता है। स्वर्ग अभी कहाँ है? फिर स्वर्ग के महल होंगे, अभी स्वर्ग नहीं है इस दुनिया में, लेकिन फिर क्या होगा? स्वर्ग के महल होंगे, महल मन हाँ, ये तो संगठन रूपी महल होगा ना, महल मन किला, किला मन संगठन। तो अभी किला नहीं है, अभी किला है, अभी चैतन्य में किला है नहीं, न माला है चैतन्य में ना, किला माला है बनी तो समझो किला बन गए, तो ब्राह्मणों का संगठन होगा, मानस वर्ग के महल होंगे, ये पहाड़ियाँ आदि टूट जाएंगे। क्या होगा जब महल होंगे तब ये पहाड़ियाँ आदि टूट जाएंगी, फिर बनेगी आप ही फिर भी बनेगा। आप फिर भी बनेगा, बहुत बच्चे इस बात में बहुत बुझते, बात कहते हैं बुझने की दरकार नहीं है, इस बात में बच्चे बहुत बुझते हैं, ये क्या शूटिंग पर चक्कर लगाए दिया कि अभी चैतन्य बने, हमें पूरी पहचान मिल गई, अब हम कैसे भूल जाएंगे, अब हम कैसे जरा बुद्धि बन जाएंगे? तो बाप कहते हैं कि भूलने की दरकार नहीं, बच्चे बहुत मुझे थे, अरे हम तो बाप के बन चुके, अब हम दूसरों के कैसे बन जाएंगे? ये हो नहीं सकता, लेकिन बाप पर एक फिर ब्राह्मण बना हुआ। बाप कहते मुझने की दरकार नहीं है, कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई, कौन चली गई? दो द्वारिका, वैद्य की दुनिया समुद्र के नीचे चली गई, सौमी द्वारिका फिर निकलेगी। नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वहां बिल्कुल ही सतु प्रधान सब नई चीजें होंगी, कोई भी चीज तमो प्रधान पुरानी सुखदायी नहीं होगी। तुम वहां के फल आदि देकर के आते हो, साक्षात्कार होते थे, साक्षात्कार बाबा बच्चों को स्वर्ग के पदों का साक्षात्कार कराते थे, वो तो थे जड़ फल, जड़ फलों का साक्षात्कार करते थे, है बात कौन से है? अरे चैतन्य फल और फूल बहुत अच्छे होंगे सबको प्रधान तुम जानते हो हम वहाँ जाने वाले वर्ल्ड की हिस्ट्री जागरण रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा निश्चय होना चाहिए क्या निश्चय होना चाहिए कि हू बहु रिपीटेशन होती है कल्प कल्प 5000 वर्ष के पीरियड में ही नहीं होती है लेकिन संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी हू बहु रिपीटेशन होती है जैसे सर्प अपनी 3-4 बार खल त्याग करता है तो 3-4 बार नई खल धारण करता है 3-4 बार अंधा होता है तो 3-4 बार सो जरा बता तो सर्प का मिसाल तुम बच्चों का उसको खल छोड़ना है तुम शरीर की बात पूर्ण परिवर्तन बाद में पहले कौन सा परिवर्तन होना है मन बुद्धि रूपी आत्मा परिवर्तन करेगी तो उसको भी 3-4 आवृत्तियों से पसार होना पड़ेगा परंतु किसी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है क्या कैसे हो सकता है इस संघ ने उन्हें 3-4 बार शूटिंग हो नीचे गिरने और ऊपर उठने नया और पुराना बनने की किसी बात को हमने इतने सबसे आएंगे महिला भी बनेंगे तुम जानते हो सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाते क्या संगम युग शूटिंग की दुनिया में ही देखो राजा विक्रमादित्य की आत्मा ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान सागर मधुबनी के कंठे पर सोमनाथ मंदिर की गुजरात में स्थापना की अग्रजन संपत्ति लगाए थे फिर क्या हुआ मुसलमान आए और लूट ले गए आज उस मंदिर का नाम निशानी वहां से खड़ा हो गया दूसरा मंदिर बनाए दिए फिर भी मंदिर बनाएंगे ये खेल ही पूजी से पुजारी और पुजारी से पूजी बनने का तो ऐसे नहीं तो 66 में मंदिर बनाया था शूटिंग पीरियड में राजा विक्रमादित्य की टोल में और फिर वो शूटिंग पीरियड में द्वापर युग में बना कलयुग में 73 आते आते जब मेले मनाकरों की शुरुआत होती है तो मुसलमानों के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है पहला आक्रमण होता है फिर बार बार आक्रमण होते हैं तो ऐसे नहीं कि वो टूट गया सोमनाथ का मंदिर तो शूटिंग पीरियड में फिर दोबारा नहीं बनेगा नहीं वो फिर बनता फिर भी मंदिर बनाएंगे ये खेल ही पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने का बनता मत मंदिर को लूट ले गया तो खत्म हो गया आपका इस दोबारा बन जाए न ब्रह्मा की बोली ली है हाँ वही ब्रह्मा की बोल फिर किसी ब्राह्मण रखते ना प्रवेश करके फिर से हाँ सोमनाथ का मंदिर बनाती है हाँ बाद दूसरा दिन ले लो नया बना दिया फिर भी मंदिर बनाएंगे ये नहीं पूजन कर पुजारी पुजारी से पूजी बनने का ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चक्र चलता रहता है ब्राह्मण फिर ब्राह्मण से देवता देवता से क्षत्रिय क्षत्रिय से वैसे वैसे से शूद्र शूद्र बन गए थे सूर्य विचारी और फिर शूद्र से फिर ब्राह्मण कथा को प्रधान स्टेज में आत्मा की चीज पर उतरती है और डायरेक्ट बाप से तुम बच्चे पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो तुम्हारे कदम में पदम की छाप लग जाती है तुम्हारे एक एक कदम में पदम की छाप लग जाती है पदम मन कमर फूल की जो भी कर्म करते हो कदम कदम का मतलब क्या है जो कदम उठाओ कीमत पर चलो तो कदम का मतलब क्या है जो काम करें कीमत के अनुसार करें बाप से पूछो तो पूछने का आदमी उल्टा उठा लेते वो समझते हैं बाबा ने कहा है ना पूछो बार बार वो ज्ञान की पॉइंट बार बार पूछते अरे वो तो तुम्हें दोबारा पूछनी भी नहीं चाहिए एक बार बाबा ने सुनाई तो दोबारा अगर तुम पूछते हो तो उसका भी हिसाब किताब बन जाता है टीचर को बार बार पढ़ाई पढ़ानी पड़े तो उसका हिसाब किताब नहीं बनेगा। हाँ अपने जीवन की कोई समस्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है ज्ञान के आधार पर तो उसको उसको पूछो ये चक्र है तुम बच्चे पढ़ना पदम पाकिस्तानी बनते हो तुम्हारे कदम में पदम पर छाप लग जाता है माना कदम में पदम का छाप लगने का मतलब है कि तुम जो कदम उठाते हो यानी जो कार्य करते हो उस कार्य में कर्मयोगी बने का छाप लगता है कि कर्म तो तुम करते हो कर्मेंद्रियों से लेकिन बुद्धि कमल फूल के समान उस कर्म से न्यारी होकर के रहती है तो तुम्हारी कदम में कदम का छाप लग जाता तुम जानते हो हमारे कदम में कदम अर्थात पढ़ाई के कदम में कदम समाये हुए जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचे पद पाएंगे जितना कम पढ़ेंगे उतना पदवी सब ऊंचे पाएंगे माना सारा पढ़ाई पर मदार है ऐसे नहीं सर्विस पर ही मदार है सर्विस भी कहां से करेंगे अगर पढ़ाई नहीं पढ़े पढ़ाई पड़ी होगी तो सर्विस भी करेगी बोलने में बाहर की धरनी भी कितनी सुंदर होती है क्योंकि टाइम ही कहता है गोल्डन टाइम जैसे कहते हैं गोल्डन चांस फिर ये चांस नहीं मिलेगा तो संगम भी जो सतयुग है वो कैसा चांस है गोल्डन चांस पुरुषार्थ का कितने सुंदर महल बनते सुंदर सुंदर संगठन बनते सतयुग का घर परिवार कैसे होंगे परिवार का ऐसा सदस्य होगा जो परिवार के मुखिया के संत चला जाए वो ही नहीं सकता ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर महल होंगे महल मन संगठन रूपी किले होंगे अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के परिवार होंगे ब्राह्मणों के देवता बनने वाली आत्मा तो हर चीज का तो प्रधान होती है देखने से ही नैन ठंडे हो जाते क्या नैन गर्म होते हैं क्या सत्य हुए उस सत्य की तो बात ही नहीं वो स्वर्ग की बात नहीं है संगम में जो स्वर्ग आने वाला है उसकी बात है कि उस संगठन में जाने मात्र से जो आत्माएं पहुंच जाएंगी उनके देखने मात्र से ही नैन ठंडे हो जाएंगे ऐसी जानकारी के तुम मालिक बन गए तुम यह नहीं यह माने कौन ये ब्रह्मा नहीं तुम ये ब्रह्मा कौन सी राजधानी का मालिक बनेगा ना कोई गर्म रहने वाला होगा ही नहीं जो पहुंचे और उसके नैन ठंडे हो जाए लेकिन तुम ऐसी राजधानी के मालिक बन रहे हो कि जहां गर्म नेत्र वाले पहुंचेंगे लाल पीली आंखें करके और जाते ही उनकी आंखें ठंडी हो जाए तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा महल ऐसा स्वर्गीय संरक्षण बनाने के लिए पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। पुरुषार्थ जितना अच्छा करेंगे उतनी प्रारब्ध बनेगी, तो ऐसा संरक्षण बनाने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन उसमें रोड़ा अटकाना चाहिए। वाइब्रेशन अच्छे छोड़ने चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए जिससे दूसरी आत्माओं को खुशी हो, ऐसा कर्म करना चाहिए जिसे देख करके दूसरी आत्मा भी अच्छा कर्म करे, खराब कर्म न करें। तो पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में सब बात लेकिन फिर तो बुद्धि बाहर की दुनिया में चली जाती है तो संग का रंग लग जाता है और फिर ज्ञान ज्ञान खत्म हो जाता है। संग तारे तो संग बोले, बाप को याद करना है लौकिक संबंध से ममा तो मिटाना है, इस संबंध से लौकिक संबंध से भाई जो ब्रह्मा कुमार कुमारी सरेंडर हो गए तथा करते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी उनका तो संबंध खत्म हो गया। बुद्धि कहाँ रही थी, लौकिक संबंध थी, यानी कुमार का दादी की बुद्धि लौकिक संबंध में पड़ी होगी, उनका कोई लौकिक दरबार है अभी बाबा जाती होगी जब उनकी कोई लौकिक संबंधी है ही नहीं अभी तो कहाँ जाएगी, वो खुद ही इतनी बुद्धि हो गई तो उनके संबंधी तो सब कि कोई आया अभी उनके लौकिक संबंधी आते हैं कोई उनमें बुद्धि उनकी लगी हुई है उनकी तरफ उनकी बुद्धि आकर्षित होती है आते हैं वो बात दूसरी लेकिन उनकी बुद्धि आकर्षित होती है उनकी तरफ बताओ बताओ अरे तो बात है तो बताओ हाँ जब वो ब्राह्मण बन जाते हैं ज्ञान ले लेते हैं या ज्ञान लेने के लिए आते हैं तो आकर्षित हो सकते हैं बाकी नहीं तो वो भी नहीं होनी चाहिए ये लौकिक संबंधियों की तरफ बुद्धि बहुत खिंच जाए क्यों क्योंकि अब तो हम ब्रह्मा बाप के जब गोद लेके बच्चे बन गए तो बुद्धि कहाँ होनी चाहिए तो दुनिया में पहुंच गए ब्रह्मा बाप के जब बच्चे बन गए तो जिसकी गोद ले ली वही हमारा लौकिक हो गया उस लौकिक को ही अलौकिक बना दिया पूर्वजन की बात की याद आना चाहिए पूर्वजन की बात तो खराब हो गई तो तथा सबसे ब्राह्मण कुमार कुमारियां भी उनका लौकिक जीवन है या अलौकिक जीवन क्या कहें उन्हें लौकिक है भाई तुमने जिस बुजुर्ग व्यक्ति की गोद ले ली तो तुम उसके उसके घर के भांति हुए ना लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो जिसकी गोद में आता है जिस बात से उस घर का भाती हुआ ना तो छूट गया लेकिन वहां तो याद आता है और यहाँ तो याद लिया आता नहीं आना चाहिए तो लौकिक संबंध से नमक में जाना है सिर्फ एक बाप को याद करना मान लौकिक संबंध एक होता है सोने की जंजीरों वाला एक लौकिक संबंध होता है लोहे की जंजीरों वाला या लोहे की जंजीरों वाला कौन सा संबंध है देह से देह की कनेक्शन वाला देह जिन देहधारियों से जन्म लिया देह ने वो हुआ लोहे का, लोहे की जंजीर वाला संबंध, और फिर जब ब्राह्मण बन जाते तो भी वो दुनिया हमारी एक नया लोक बन गया। तो उसमें भी सोने की जंजीर पड़ जाती है, उनसे जंजीर में भी बंधना, उसमें भी मुन्नत तो नहीं लगाना। फिर जीरो जंजीर में लगाना, जीरो की तो जंजीर होती नहीं होती, तो होती है नहीं होती, होती हीरो की जंजीर नहीं हो सकती, क्योंकि हीरे तो बिंदु की चेक में कितने वाले माला होती है, तो हीरो की माला होती है तो जंजीर भी हो गई भाई। हीरो में सुधार किया और उसको फिरो दिया है। हाँ तो बताया, एक बाप दूसरा न कोई, ममत तो क्यों नहीं जाना है, हीरे या सोने या लोहे की जंजीर से ममत तो क्यों नहीं जाना है। कि तू ममत तो लग जाएगा जिसमें, तो उससे ऊंची चीज नहीं बन पाएगी, क्या मरता फिर उससे नीची स्टेज वाला ही बनेगा, ऊंची स्टेज वाला मरता नहीं बन सकता। चाहे वो हीरो की जंजीर में ममत तो लगाओ, चाहे सोने की जंजीर में ममत लगाओ, मान लो दीदी दादी दादा उनके सर किसी का ममत लगा, तो उनसे उनका मतलब कोई फायदा था, उनके बनने की जरूरत ही आ गई। तो एक बात दूसरा, तो जिसका दुनिया में कोई बंधन नहीं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे सोने का हो चाहे हीरो का हो, तो वो आत्मा ऊंची से ऊंचा पद पाए सकते हैं, उसमें बंधे नहीं। हाँ, एक बात के बंधन के सिवाय और कोई कोई दूसरा बंधन नहीं। एक बात को याद करना है, अच्छा मीठे मीठे किसी देर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, इतना किसका याद प्यार, माता पिता का, बाप दादा और माता पिता में अंतर क्या है जो अलग अलग बोला जाता है, ये शब्द अलग अलग बोलने की क्या दरकार, जब एक ही है तो जरूर अलग अलग है। तो माता पिता किसे कहें और बाप दादा किसे कहें, इसमें कंबाइंड कौन है और अलग अलग कौन है। माता पिता अलग अलग, माता होती है स्त्री और पिता होता है पुरुष। जब ब्राह्मण हैं हम तो ब्राह्मण साकार है या आकार निराकार है, साकार में साकार शक्ति पर है, तो साकार के माता पिता भी गोद लेने वाले भी कैसे होने चाहिए, साकार होने चाहिए। तुम ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है, तो अपने को ब्राह्मण कहते हो ब्रह्मा की औलाद के हम सच्चे ब्राह्मण है, तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है, ये मुरली में प्रश्न किया गया, तो कहेंगे गुप्त मत तुम कहाँ से टपक पड़े, उनको बोल किसने लिया, कोई जवाब नहीं। तो माता पिता साकार में होने चाहिए, उनका याद प्यार, और दूसरी बात बाप दादा, ये है कंबाइन। बाप माने सुप्रीम सोल, बाप जो बाप इस शक्ति पर प्रत्यक्ष होता ही है तब, जब मनुष्यों का जो पिता है, मनुष्यों का जो आदि है जिसे आदि देव कहा जाता है, मनुष्य शक्ति का उसमें प्रवेश करता है, नहीं तो वो सुप्रीम को प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वो व्यक्ति नहीं बन सकता, व्यक्ति ही नहीं होगा तो दुनिया में बैठाना कैसे जाए, उसका अस्तित्व कैसे होगा। तो बाप और कौन सी चोल, साकार और निराकार दोनों का कंबिनेशन बाबा, वो बाप जिसको बाबा कहते हैं और फिर उसने तीसरी आत्मा और प्रवेश करती है ब्रह्म जो मनुष्य आत्माओं में बड़ी क्या मनुष्य आत्माओं में बड़ी काम रखने वाली है तो वो ब्रह्म यानी दादा बड़ा भाई तो ये बाप दादा ये है कंबाइन उनका याद क्या तो गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार बाप दादा तो एक हो गए माता पिता दो अलग अलग हो गए वे तो दो ही और तीसरी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते तो नमः माने झुकना तो सुप्रीम कोर्ट ज्योति बिंदु भी झुकेगा कैसे नमन कैसे करेगा तो जरूर सारकार